हमारा जो दीन है हमें ये कहता है कि बुनियादी जो हमारा कदर है ना, जिसके ऊपर हमारा पूरा कल्चर या हमारा पूरा चीज खड़ी है,
मतलब ये साइकोलॉजिकल जो एक लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हुई है कि इस चीज को आपने एक डिजीज नहीं कहना। ऑल्दो मतलब आज तक अगर आप 30 years पहले की किताबें उठा लें तो उसमें उसको डिजीज ही समझा जाता था और उस जनरलिस्ट फोरिया को वो कोशिश करते थे किसी तरीके से एड्रेस करते हैं। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्स का कि नेचुरली बायोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो जिसको हम मुखन्नस कहते हैं उर्दू में, ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बाकी ये जो 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 यहाँ पे आइडेंटिटी है कि मैं मेल हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं एक फीमेल की बॉडी में पैदा हो गया हूँ, ये डिफरेंट एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, इसका कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। मतलब वो डिबेट ये रही नहीं है कि बायोलॉजी, वो कहते हैं इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग, मेनली उन्होंने उसको एक नफ्सियाती मसला बना दिया कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। किसी कहते हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं आई एम अ चॉकलेट पर्सन तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, तो मतलब उसका मेरी बायोलॉजी से या लेना देना नहीं है, मेरी ख्वाहिश है, वो जिसे कहते हैं ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने इसको बेस कर दिया। इसको जिस तरीके से कि आप क्या कह सकते हैं प्रोपोगेट किया गया था, एक एक यूएस में थे डॉक्टर मनी, उनका बड़ा मशहूर केस है रीमर ट्विंस का, जो लोग लिटरेचर से वाकिफ है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो शायद। उन्होंने मतलब वहां पे एक बच्चा था जिसके साथ कोई ऑपरेशन के वक्त प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, और उसका जो था वो जो पार्ट्स थे वो उनको रिमूव करना पड़ गया, तो उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहले वो ट्विंस थे, मतलब दूसरा एक जो था वो नॉर्मल था, एक केस था बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गया, और उन्होंने उसके ऊपर क्या किया उस बच्चे को एक्सपेरिमेंटरी शुरू की। उनको तो एक क्लासिकल केस मिल गया, उनके उनका ये थ्योरी थी कि ठीक है ये इट्स नॉट बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकली तो वो मेल पैदा हुआ था लेट से, और वो उसके पास उसका प्रॉब्लम हो गया तो वो फीमेल, उनका हम इसको फीमेल बनाए, तो उन्होंने उसको फीमेल वाली वो मेडिकेशन देना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा उसके कपड़े भी उस तरीके से बनाना शुरू कर दिया, उसको उसी तरीके से ड्रेस भी करना शुरू कर दिया, और वो मतलब उसको वो एक पोस्टर चाइल्ड बने कि देखें जी बायोलॉजिकली तो ये मेल था, इसका तो एक्सीडेंट हुआ और उसका पार्ट रिमूव करना पड़ गया ड्यू टू सम रीजन, और हमने इसको ये देखे और सोशल कंडीशनिंग की, इसके पेरेंट्स ने भी बड़ा ओपनली किया और उस बच्चे को उन्होंने वो बना दिया, एक गर्ल बना दिया। अब वो एक सर्टन टाइम के बाद जाकर हुआ पता ये चला, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा था, वो एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो बंदे ने बाद में खुदकुशी की, बिकॉज उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई, मैं ये नहीं बनना चाहता था। मतलब उसके उसने छोटी छोटी बातें की जो शायद हमें बहुत छोटी सी लगी लेकिन एक्चुअली वो बहुत डीपली रूटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्टेड टू पी वाइल स्टैंडिंग अप, ठीक है, तो वो उसके अंदर ये एक डिजायर थी, नेट से उसके बाद कहते हैं यू आर अ गर्ल तो आपको बैठ के करना है, इसलिए कहते उसको वो किया जाता था। वो उस ऐसा ऐसा वो बेचारा एक एडोलेसेंस की टीन एज में था, तो वो मतलब इट वॉज टू मच फॉर हिम टू टेक दिस थिंग, और उसके बाद वो डॉक्टर्स ने भी उसको वो डिसओन करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द एंड जाके, लेकिन शुरू में वो पोस्टर बॉय रहा है। अगर आप तारीख पढ़ें 2000s के अंदर द फर्स्ट डेकेड ऑफ इट, उसको मतलब उसको बड़ी इज्जत मिली और एक जनाब देखें ये भी होता है, उन्होंने एक तरह का एक सबूत था कि हमें एविडेंस मिल गया,
उनको अपनी कामयाबी नजर आ रही थी उसमें कि हमने इंसान को किस
तरह कामयाबी मिली। पहले तो एक थ्योरी में एक चीज थी, फिर वो एक प्रैक्टिकली एक चीज आ गई और उसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस बच्चे का अंजाम क्या हुआ, वो इतना एंग्जाइटी उतने उसका शिकार होकर खुदकुशी की। तो मैं कह रहा था कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है वो आपको जो ऑर्डर होता है वो आपको एंग्जाइटी से बचाता है, क्योंकि इंसान को जब अपने लिमिट्स का पता ना चल रहा होता है इंसान परेशान भी हो जाता है, बिकॉज इट डजंट हैव अ स्ट्रक्चर टू नेविगेट द वर्ल्ड। अगर आप अगर आपको अल्फाज का एक चुनाव करने के लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप कैसे बात करेंगे, आपसे बात नहीं हो पाएगी।
जो मुआशरा होता है जो आपकी फैमिली होती है वो रोल प्ले करती है आपको डेवलप करने में स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली जो है ना वो आपको डेवलप करती है। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर ग्रो करते हैं बल्कि आपके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी उनका काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट का कहा गया है ना कि अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करें, घर का माहौल ठीक करें। मैं आहद भाई के पास जाने से पहले थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूंगा, जो हमारा असल में बेसिक सवाल था कि क्या ये कोई नई बात है या ये पहले भी था। तो उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी तवज्जो दी कुरान की तरफ, और अगर आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ भी देखें तो उसमें ये है कि इट्स नॉट अ न्यू इशू असल में ना, ये इंसानों का आज का मसला नहीं है। ठीक है, हमने इसको जदीद दौर के तकाजों में देखना है कि अब इस वक्त हमारे पास इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, लेकिन ये एक पुराना मसला है। मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने गांव का माहौल देखा है, और मैं जानता हूँ कि ये मसला वहाँ पे भी मौजूद है। उसको ये कि उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, उसको उस तरीके से कैनवस पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन ये प्रॉब्लम मौजूद है। जब हम इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे माशरे में भी मौजूद है, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इसका हल इज्तिमाही तौर पे हम इस जदीद दौर में किस तरह निकालेंगे। हम हाथ भाई की तरफ जाते हैं इस सवाल के साथ। ये जो इसको एक तहरीक बना के पेश किया जा रहा है, क्या आप इसके कोई टारगेट्स भी देखते हैं, कोई इसकी मंजिल भी है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं?
अच्छा, मैं थोड़ा सा पिछले सवाल के जवाब की तरफ ही दोबारा आ जाऊं कि एक चीज़ जो हम इसमें मिसिंग, या हमें दूसरे लेंस से देखना पड़ेगा। ये मसला पुराना है, मगर इसके प्रोग्रेशन या उसके एक्सपेक्ट्स नहीं है। पुराने से मुराद ये है कि सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग थी वो ये थी कि आपने एक दफ़ा सेक्सुअल फ्रीडम एक्सप्लोर करना शुरू की, तो ह्यूमन माइंड जो है ना, वो काफ़ी अडेप्टिव होता है। जब आपने सेक्सुअल फ्रीडम एक्सप्लोर करना शुरू की, तो आपको जो नॉर्म स्ट्रेट पीपल हैं वो आपको अजीब लगने लगे, क्योंकि आप एक दफ़ा उससे आज़ाद हो गए थोड़े से। फिर आप एल ओ जी की तरफ आए, जब आपने एल ओ जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया, आप वहाँ से डिसेंसिटाइज हो गए। जब आपने एल ओ जी को ये जानते हुए, कौमे लूत का भी अगर आप पढ़े ना, तो आपको अंदाजा होगा कि उनके यहाँ भी फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट मौजूद था, मगर वो लोग डिसेंसिटाइज हो चुके थे, क्योंकि सेक्सुअल फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने, इंसान की ये ख्वाहिश है कि एंटरटेनमेंट के नए नए तरीके ढूंढे। जब आप एल और जी से भी पास हो गए, तो आपने ये एल जी बी टी क्यू बनाना शुरू कर दिया। मगर इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि पहले और आज में ये फर्क है, पहले लॉजिक को डिनाई नहीं किया जा रहा था, अब लॉजिक डिनाई हो चुकी है। इंसान की जो सोचने की सलाहियत है उसको जब्त कर दिया गया है। अभी वो डॉक्टर फातिमा जो है वो भी डीएसएम के बारे में बता रहे थे, DSM-5 में जेंडर डिस्फोरिया अभी भी लिखा हुआ है एज अ डिजीज, मगर उसके बावजूद उन्होंने साथ एहतियातन लिख दिया कि मगर जिस जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, जरूरी नहीं वो इसे सफर करो। मतलब उन्होंने एक सेफ साइड लेने की कोशिश की। अब मसला सिर्फ ये हो गया सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेशन उनकी, पहले डिसेंसिटाइज किया सेक्सुअली, फिर उसके बाद फैमिली सिस्टम का इनकार हो गया कि फैमिली सिस्टम लॉजिकली नहीं है। अब बेसिक लॉजिक भी खराब हो चुकी है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, LGBTQ में आप लोगों को पता होगा कि वाइडली नोन है टी ट्रांसजेंडर है। अब टी ट्रांसजेंडर भी नहीं रहा, अब टी ट्रांस रेशियल भी हो चुका है। अब व्हाइट पर्सन कैन क्लेम ही इज अ ब्लैक पर्सन, अ ब्लैक पर्सन कैन क्लेम ही इज अ व्हाइट पर्सन। बात याद, आपको इतना ज्यादा, मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो अगला सवाल आपने किया वो इससे बिल्कुल लिंक है कि हाँ, इसके टारगेट्स क्या है, या हम अपने लोगों को, या इस ओवरऑल जो सेमिनार है, इसके मकसद में ये शामिल हो सकता है कि लॉजिक को ही लॉजिक से डिफीट करना पड़ेगा। उन लोगों ने लोगों के दरमियान ये डिजीज फैला दी कि लॉजिक नाम की अब कोई चीज ही नहीं है, सेक्सुअली खास तौर पे, जो कि फोकस है सबका, वरना इन जनरल भी। आपको पता है, आप अगर टिकटॉक वगैरह पे जाके देखें तो लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई 2+2 इज 4। लिटरली ये सवाल है कि व्हाई 2+2 इज 4। फ्रीडम होनी चाहिए इन एनी पैरेलल यूनिवर्स, यानी कि बड़े बड़े अल्फाज के दरमियान में बस डाल दो, इन एनी पैरेलल यूनिवर्स ऑफ फ्रीडम के तौर पर 2+2 5 भी हो सकता है, तो 2+2 को 4 कहना आपकी फ्रीडम के खिलाफ। ये लिटरली इस तरह की वीडियोस डाल दिए। तो लॉजिक इन्होंने इतनी ज्यादा खराब कर दी, इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि वो DSM-5 में जेंडर डिस्फोरिया का लफ्ज था, मगर अब उसको भी हटा दिया जाएगा कि बस आपने हर बंदे को इतनी फ्रीडम दे दो, चाहे माशाल्लाह डम हो रहा है, और बहुत सारे लोग इससे एग्री भी करते हैं कि डम हो रहा है तो होने दो, क्योंकि इससे क्या होगा, पॉपुलेशन खत्म हो गया आपकी, सब कुछ होगा, हम वैसे ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मसला पुराना है, इन समरी एक्सपेक्ट बहुत डेंजरस हो चुका है लॉजिक वाला। आपने पहले फैमिली सिस्टम तो खत्म कर दिया, फिर आपने कह दिया वो लोग अलग रहे जिन्हें फैमिली से कोई लेना देने ने, कोई मसला नहीं, वो अलग रह ले, हम बाकी लोग पॉपुलेशन को देख लेंगे या अपने नॉर्म्स को देख लेंगे। मगर अब जब लॉजिक आपने खराब कर दी ना, लॉजिक सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स को जन्म देती है। उसकी वजह यह कि आपके अंदर एक फितरत है, फितरत को आप मुसलसल डिनाई किया जा रहा है, और जब इनका आपस में क्लैश हो जा रहा है तो आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जा रहे हैं।
टारगेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं पर्सनल लेवल पे नहीं समझ पा रहा कि, मैंने जो शुरू में बात की थी कि दो लेयर्स हैं, सेकंड लेयर तो हमारे सामने बहुत ऑब्वियस है, जो कि पिछले 10 सालों में बहुत आया हो गया, हर बंदा माइक पकड़ के शुरू हो जाता है कि ये है, सही है, गलत है, जो भी है, और मुझे फ्रीडम होनी चाहिए, होना चाहिए, LGBTQIA हो गया, सब कुछ हो गया। जो फर्स्ट लेयर है मुझे उसकी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जो टारगेट्स है ना, वो उनकी तरफ से है। मुझे पर्सनली लगता है कि टारगेट जो है ना, वो सबसे, जो मेरा अपना पर्सनल है कि टारगेट ये है कि सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इन अ सेंस कि वो डम हो जाए। जब आप एक लेवल पर डंप करके ले आएंगे पूरी पॉपुलेशन को, उसके बाद उनके लिए कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। वो इस टारगेट को कर रहे हैं।
मैं ऐसा ऐसा करते हैं, थोड़ा जो सवालात आ रहे हैं फेसबुक से उनको देख लेते हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। नाम नहीं आ रहे कुछ लोगों के, ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह आप बहुत ही काबिल एहतराम और आपने अच्छा हुआ अगर आप किसी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दूसरे कह रहे हैं कि जो कुरान में लूत का जो है ना जिक्र है, तो एक सवाल आया उमर भाई आपसे कि भाई वो जो आप स्टोरी बता रहे हैं ना उसका रेफरेंस भी दे देना अगर आप, फिर बाद में कमेंट्स में हम इंशाल्लाह डाल देंगे।
मैं कमेंट्स में वो जो रीमर स्टूडेंट्स का केस है उसका रेफरेंस दे दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग केस है वो, और उसमें कुछ और भी चीजें मैं डिटेल में नहीं जानना चाह रहा जो उनके डॉक्टर हैंडल कर रहे थे उसको, इवन ये लोग भी वो नहीं करते उनके ऊपर इतराजात करते हैं। लेकिन खैर जो भी आहद भाई टारगेट्स के एंगल से बात कर रहे थे, मैं तो इस बारे में काफी क्लियर हूँ उनके टारगेट्स क्या हैं। देखिए इंसान जो है, जो नजरिया आप उसको समझें, नजरिया ये है कि हमें आजादी चाहिए और हम पे कदगन कोई ना हो, हम अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करें, ये इंसान की ख्वाहिश है जो इंडिविजुअल लेवल पे है, जिसमें लोग इंडिविजुअली मोटिवेटेड इसलिए होते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल मोटिवेशन सबसे पहले होती है, उसके बाद जो सेकंड चीज है कि ठीक है उसमें जब जो जो बालादस्त तबका होता है समाज का, वो देखता है कि इसमें अब हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, देयर इज अ स्लोगन ऑन व्हिच वी कैन यू नो पीपल को, हम लोगों को उसको जमा कर सकते
कैश,
उसको हम कैश करेंगे, उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, उसके अंदर एक मार्केट भी क्रिएट होगी और उसमें एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि हम लोगों को कंट्रोल भी कर सकें। लेकिन आप में देखने की चीज ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ओरिजिनेट वो इंसान के नफ्स से हो रही है, वहां पे हमने रोक लगानी है, अल्लाह ने वहां पे रोक लगाने का हमें कहा है कि आप अपने ख्वाहिश नफ्स जो है उसकी आपने इत्तबा नहीं करनी, क्योंकि ये यही तो सारे का सारा मसला है कि अगर मेरी ख्वाहिश नफ्स को अवलियत हासिल है, अगर मैं उसको सरेंडर नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि अगर दावत के एंगल से आप देखें तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है LGBTQ वाला, क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे जो बड़े कूल बन गए थे इन द सेंस कि हम ठीक है जी बाइबल को नहीं मानते, जो जो दिल चाहता जो करे, अब उनके लिए भी एक चीज बड़ी क्वेश्चनिंग हो गई है कि अच्छा फिर हम कैसे अपनी वैल्यू सिस्टम ड्राइव करेंगे। अगर हम वैल्यू सिस्टम ये सेकुलरिज्म के पीछे पड़े जाते हैं, हम रिलीजन को वैल्यू सिस्टम में नहीं लेकर आते, फिर देयर इज नो बाउंड्री, यू कैन नॉट ड्रॉ अ बाउंड्री। देखिए अभी LGBTQ तक बात है, आगे कल को वो ये कहेंगे कि जनाब ये अभी ऑलरेडी कह भी रहे हैं कुछ लोग उसमें कि हम जानवरों को भी इसमें शामिल करें, किस बंदे को जानवर के लू फेलिया उसे कहते हैं, या जो बच्चों से मोहब्बत है पीडो फेलिया उसको भी शामिल किया जा रहा
है। बड़ा जबरदस्त कमेंट आया है, ये मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा लंबा है तो वो यही बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं कि इस्लाम की रूह और मतलब पाकिस्तान को अख्तियार करना है, जिसके उसूल के कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर खूबी बयान की और अख्तियार करके इस पर पाकिस्तान को हासिल किया जा सकता है, तस्किन नफ्स की बात हो रही है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं खूबी में यही है कि अपनी फितरी जिनसी ख्वाहिश को सिर्फ अपनी बीवी से महदूद कर लें, इसके बरक्स बातिल सोच है इंसान मादर पे दर्जा, तो कह रहे हैं कि ये शैतान का जो है ना है, और जो पाकिजगी है ना उसको इख्तियार किया जाए। तो माशाल्लाह अच्छा कमेंट किया। बात को कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या समझ आप ऐड करें।
हाँ आखिरी बात जो इसकी इंतहा जो आगे शायद हो भी जाए वो बता, देयर इज नो लॉजिकल रीजन, जैसा आपसे गुफ्तगू भी कर रहे थे ना कि आप इंसेस्ट को क्यों क्रिमिनलाइज करेंगे, दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, अगर फ्रीडम की बात करनी है, अगर दो कंसल्टिंग एडल्ट्स हैं तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो सब कुछ नॉर्मल है ना।
मैं करेक्ट कर दूं उमर, डॉक्टर उमर को यहां पे करेक्ट कर दूं, ये पुराना हो चुका है, ये बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट जो है पीडोफिलिया या बिस्टेलिटी की तरफ है, इंसेस्ट वाला पॉइंट पुराना हो चुका है, आपको पता है 2016 में आई गेस ये लॉ था जर्मनी
में, लेकिन लीगली इट्स नॉट स्टिल वैलिड ना, लीगली इसको
नो जर्मनी में लीगल
क्राइम है, क्राइम
नो जर्मनी में इलीगल था, 2016 में पार्लियामेंट में डिस्कस होकर इंसेस्ट को हटा दिया गया, it's not illegal anymore।
इसके नजरियाती जवाब भी मौजूद है, हमारे पास प्रैक्टिकल भी मौजूद है, हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है, और अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन से जुड़ने का एक मौका दिया है कि हम दोबारा इसको रिवाइव करें अपने